पेज 78, लेसन नंबर 12, पड़ोसी देश। आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। सचिन ने सोचा कि चलकर मधुमिता से पूछता हूँ कि क्या वह श्रीलंका से है। स्कूल पहुंचकर उसने पूछा, मधुमिता क्या तुम श्रीलंका की रहने वाली हो? उसने सचिन को नक्शे में बांग्लादेश दिखाया। इस नक्शे को देखकर तुम मालूम कर सकते हो कि दक्षिण में हमारे पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव हैं, उत्तरी हिमालय में नेपाल व भूटान है, पश्चिम में सिंध नदी के साथ पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं। इन पड़ोसी देशों के साथ हम नदियों का पानी बांटते हैं, हम जूट, चाय व लकड़ी खरीदते या बेचते हैं और यहाँ के वासी इन देशों में काम करने व रहने के लिए आते जाते रहते हैं। इन सभी पड़ोसी देशों में मॉनसून पवनों से ही बारिश होती है, जिसकी मदद से चावल, गेहूं और फल आदि उगाए जाते हैं। हम सभी पड़ोसी क्रिकेट का खेल भी बड़े शौक से खेलते हैं। श्रीलंका और मालदीव बहुत सुंदर द्वीप हैं। ये दोनों ही हिंद महासागर में हैं। इन द्वीपों में बहुत सुंदर तट हैं और यूरोप व अरब देशों से व्यापार के केंद्र भी हैं। पेज 79, मालदीव। मालदीव के द्वीप प्रवाल मूंगा के बने हुए हैं। इनमें से बहुत से द्वीपों पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर या नारियल जमा करके अपना गुजारा करते हैं। यह द्वीप अपनी सुंदर मूंगा चट्टानों व मछलियों के लिए मशहूर है। अब श्रीलंका। श्रीलंका के दक्षिणी भाग में कोलंबो है, जो यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर आकर्षक तट हैं, जहाँ पर नारियल बहुत उगता है। यह भाग भूमध्य रेखा के पास है और वर्ष भर गर्म रहता है। यहाँ पर मानसून पवनों द्वारा ही वर्षा होती है। मध्य की उच्च भूमि में गरम मसालों की खेती होती है। इन मसालों का व्यापार सदियों से यूरोप के साथ होता रहा है। यहाँ पर चाय और रबर की रोपण कृषि भी होती है। इस द्वीप के उत्तरी भाग में समुद्र से मोती निकालने का काम भी होता है। यहाँ के घने जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए हाथी का प्रयोग किया जा सकता है। पूर्णिमा के दिन हाथियों का जुलूस निकलता है। हाथी, नाचने वाले, ढोल बजाने वाले सभी सज धज कर आते हैं। श्रीलंका में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए बौद्ध त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं। पेज 80। अब बांग्लादेश। भारत के पूर्वी तट पर श्रीलंका से यात्रा करते हुए बंगाल खाड़ी की ओर चलते हुए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दिखाई देता है। यहाँ पर इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी में हर वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के साथ नई उपजाऊ मिट्टी भी आती है। यहाँ पर समुद्री तूफानों के कारण बहुत तबाही मच जाती है। यहाँ के लोग चावल और जूट की खेती करते हैं। जूट के लिए गर्म जलवायु और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। जूट से बोरे बनते हैं। इन बोरों में चाय और चावल भरकर बांग्लादेश से दूसरे देशों में भेजा जाता है। ढाका और चिटगांव के बंदरगाह पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ की हिल्सा मछली सारे दक्षिणी एशिया में बहुत शौक से खाई जाती है। उत्तरी बांग्लादेश में खनिज तेल के भंडार और कोयले की खाने हैं। यहाँ पर सूत से बहुत सुंदर ढाकाई साड़ियाँ बुनी जाती है। ढाका के बंदरगाह से बांग्लादेश से लकड़ी और चावल निर्यात किया जाता है या नेपाल और भूटान से ऊन का आयात किया जाता है। गंगा नदी के पानी का बंटवारा फरक्का बैराज पर होता है। यह एक बहुत सुंदर स्थान है। पेज 81। भूटान। उत्तर में नेपाल और भूटान हिमालय पर्वतमाला के बीच में पड़ते हैं। टोंगसा, काली गंडक और अरुण गंगा से आ मिलती है। नदी के जल से पन बिजली बनाई जाती है। भूटान का सबसे घना आबाद क्षेत्र मध्य में है। यहाँ पहुंच पाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके दक्षिण में 2000 मीटर ऊंची पर्वतमाला है। यहाँ के मैदानों के बीच नदियों के खड्ड हैं, जो घने जंगलों से ढके हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है और हवाई अड्डा पारो है। यहाँ बहुत अच्छी सड़कें हैं। यहाँ के लोगों को पैदल चलने का बहुत शौक भी है। ये लोग अपने जंगलों को बचाते हैं व सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पेज 82। नेपाल। उत्तर की ओर हमारा पड़ोसी नेपाल है। भारत की ओर से नेपाल जाने के लिए कई पहाड़ी दर्रे हैं, लेकिन भूटान से भारत की ओर आना आसान नहीं है। तराई की ओर से नेपाल पहुंचना भी मुश्किल है। आज भी लुम्बिनी वन, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, काठमांडू पहुंचने का मुख्य रास्ता है। नेपाल की घाटियां चौड़ी हैं, जिनमें से नदियां दक्षिण दिशा में बहती है और वे भारत में बहती हुई गंगा यमुना द्रोणी का हिस्सा बन जाती हैं। नेपाल के किसान पहाड़ी डालों पर सीढ़ी नुमा खेतों में फसल बोते हैं। नेपाल में पानी की काफी कमी रहती है। घर के काम के लिए औरतों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। मानसून पवने हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के कारण आगे नहीं जा पाती, और नेपाल के उत्तरी भागों में कई बार सूखा पड़ता है। नेपाल के तराई भाग में रेलगाड़ियां कम चलती हैं। यहाँ पर हवाई जहाजों और बसों आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। उत्तर की ओर एवरेस्ट और अन्नपूर्णा की ऊंची चोटियां हैं। मुस्तांग घाटी में एक ऊंची झील भी है। नेपाल में दशहरे का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर गोरखा और शेरपा रहते हैं। तेंजिंग नोरंगे एक प्रसिद्ध शेरपा है, जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे। पेज 83। अब है पाकिस्तान। राजस्थान की मरुस्थली तथा पंजाब और जम्मू कश्मीर के पश्चिम में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। यहाँ की मुख्य नदी सिंधु है। पाकिस्तान के पश्चिम में किरथर और सुलेमान पर्वतों की एक दीवार सी है। उत्तर में काराकोरम श्रृंखला है। इन्हीं पहाड़ों में बोलन, खैबर, गिलगिट और हुंजा के दर्रे हैं। इन्हीं दर्रों के द्वारा भारत में व्यापारी और अनेक जनजातियों के लोग आए। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में किसी समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता पनपी थी। लाहौर में अकबर की राजधानी थी। सरहिंद, रेचना और बारेंद दोआब की जमीन कपास और गेहूं की खेती के लिए हमेशा से मशहूर है। पेज 84। अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1। दक्षिणी एशिया के मानचित्र पर सभी देशों के अलग अलग रंगों में रंगो, उनकी राजधानियों के नाम भी लिखो। क्वेश्चन 2। पंजाब और बांग्लादेश के चित्रों की तुलना करते हुए 4 वाक्य लिखो। 3। सभी पड़ोसी राज्यों में से तुम किस में जाना चाहोगे और क्यों? 4। नेपाली, भूटानी, सिंहली और बंगाली में कोई एक वाक्य लिखो और बोलना सीखो। इसके बाद विश्व के मान चित्र हैं और उनमें रंग वगैरह भरने का है। सो आपका यहीं पर बुक समाप्त होता है।